अब हम लोग एक दूसरे चैप्टर पर आते हैं, नाम है ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म। वैदिक धर्म के प्रधान प्रेरक ब्राह्मण थे तथा तत्संबंधी विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के नियामक और निर्देशक भी वे ही थे। अतः आर्यों का ऋग्वेदेतर धर्म, जो कालांतर में आकर हिंदू धर्म का उत्स बना, ब्राह्मण धर्म भी कहा गया। ब्राह्मण धर्म अथवा हिंदू धर्म का उद्गम स्थल वैदिक धर्म है, जिसमें वैदिक देव तत्व और ज्ञान तत्व का सन्निवेश है। हिंदू धर्म की समस्त व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों का आधिपत्य और निर्देशन रहा है, इसलिए इसे ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना गया। इतरेय और शतपथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में इसके दार्शनिक पक्ष पर विस्तार से विचार किया गया है। उत्तर वैदिक काल में आकर विभिन्न प्रकार के विशाल साहित्य की भी रचना हुई, जिसकी प्रणेता प्रधानतः ब्राह्मण थे। ब्राह्मण आरण्यक और सूत्र ग्रंथों आदि की रचना उन्होंने ही की थी, इसलिए उन्होंने समाज के समस्त धार्मिक कार्यों में अपनी उपस्थिति और श्रेष्ठता अनिवार्य रखी। यही नहीं, संपूर्ण धर्म काव्य कार्य का संचालन केवल उन्हीं के द्वारा संपन्न हो सकता था। उनके पास विद्या की शक्ति थी, जिससे वे समाज में आदृत और लब्ध प्रतिष्ठित थे। इसलिए इतरे ब्राह्मण में कहा गया है कि जिसके पास विद्या थी वह लोक और परलोक दोनों में सुख पाता था। यही नहीं, धर्म संबंधी अनेक प्रकार की कर्मकांडी व्यवस्था का प्रचलन भी ब्राह्मणों की ही उपज्ञा थी। वस्तुतः ब्राह्मण धर्म का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था थी, जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के नाम से समाज में स्थित हुई। वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन और कार्य कर्तव्य निष्पादन की परिचायक थी तथा आश्रम व्यवस्था पद्धति निरूपण और विधि निर्धारण की परिचायक। समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्तरदायित्वों और कर्मों का आकलन और निर्धारण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत होता था तथा जीवन को विधिपूर्वक चार आश्रमों में विभाजित कर व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक धार्मिक संस्कार किए जाते थे, जो धर्मगत जीवन के लिए उसका पथ प्रदर्शन करते थे। अतः ऐसे धार्मिक संगठनों के माध्यम से मनुष्य का जीवन परिष्कृत और विकसित होता है। इस तरह उसके जीवन में धर्म कर्तव्य के रूप में स्थित हो चुका था, जो उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास में अभूतपूर्व योग था। इन समस्त व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों को ही प्रधानता और मान्यता थी तथा उन्हीं को एक अधिकाधिक अधिकार प्राप्त था। इसलिए समाज में उनका विशिष्ट स्थान ही नहीं था, बल्कि उनकी सहमति और सहायता के बिना समाज का कोई भी कार्य हो पाना असंभव था। समाज के विभिन्न धार्मिक कार्य, कृष्ण पूजन, यज्ञ आदि और तत्संबंधी कर्मकांड ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न होते थे। वे ही संपूर्ण धार्मिक क्रियाएं मंत्रों के उच्चारण के साथ कराते थे। ब्राह्मण ग्रंथों, संहिताओं आदि में धर्म के इन विभिन्न तत्वों की चर्चा विशदतापूर्वक की गई है। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत संन्यास और तपश्चर्या का जीवन श्रेयस्कर मान गया, जिसमें सत्य का साक्षात अनुभव होता था। विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऐसे ही सत्यनिष्ठ मनुष्यों ने की थी, जिन्होंने देव, ब्रह्म और आत्म तत्वों की विशद विवेचना की थी। प्रकाश और अंधकार तथा देव और असुर को पृथक वृत्ति के अंतर्गत न मानकर एक ही देवता से उत्पन्न दो पृथक तत्वों के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। सत्य और असत्य की कल्पना देव और असुर के रूप में की गई तथा यह कहा गया कि देवता को यज्ञ तथा स्वर्ग मिला और असुर को भूतल। वस्तुतः देव और असुर अंतस की सत्य और असत्य प्रवृत्तियां थी, जो क्रमशः आलोक और अंधकार थी। पुण्य उज्ज्वल और प्रकाशमय था एवं पाप अनुज्ज्वल और अंधकारमय। अतः पुण्य सत्य प्रवृत्तियों और सत्कर्मों से ही संभव था। सदाचार और सच्चरित्रता इसका आधार थी। ब्राह्मण धर्म पद्धति में तपश्चर्या और ब्रह्मचर्या के जीवन का भी प्रधान स्थान था। तप का जीवन केवल वृद्ध व्यक्ति के लिए ही नहीं निर्देशित किया गया था, बल्कि युवा व्यक्ति के लिए भी संभव था। आध्यात्मिक ज्ञान और बौद्धिक उत्कर्ष के लिए वह तपस्वी बन सकता था और संसार से विरक्त होकर एकांत का अनुगमन कर सकता था। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में अरण्य में रहता हुआ वह ज्ञान के अन्वेषण में सतत प्रयत्नशील रहता था। इस तरह ब्राह्मण धर्म की सामान्य व्यवस्था में समाज की अपेक्षाकृत अधिक लोग भौतिक संसार से विरत होकर सत्य और ज्ञान की खोज में लगे थे तथा कठोर और कठिन जीवन यापन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के निमित्त भ्रमण करने वाले तपस्वी और साधु अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न संप्रदायों में संगठित थे, जो अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट मत और तप का अनुगमन करते। अतः मत और तप से संबंधित ऐसे नियम और सिद्धांत ग्रंथों में लेखबद्ध भी किए जा चुके थे। अष्टाध्यायी में ऐसे तपशील भिक्षुओं का संदर्भ मिलता है जो एकांत भाव से ज्ञानार्जन करते थे। कारमंदिन और पारासिरण नामक दो प्रकार के भिक्षुओं की सूचना पाणिनि ने दी है। इनमें पराशरी संप्रदाय का विशेष स्थान था। मध्यम निकाय से विदित होता है कि बुद्ध ने पराशरी नामक एक ब्राह्मण आचार्य के मत की मीमांसा की थी। ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञों की श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया है। यज्ञ के माध्यम से देवगण प्रसन्न होते थे और तदनंतर मनुष्य को अपेक्षित वर देते थे। यज्ञ की संपन्नता अग्नि से संभव थी, जो अत्यंत पवित्र और अमर माना जाता था। अतः देवताओं की प्रतिष्ठा और विशिष्टता यज्ञ से ही होती थी। यही नहीं, एक देवता की दूसरे देवता से श्रेष्ठता और प्रधानता भी यज्ञ से ही सिद्ध थी। ऐसी स्थिति में देवतागण यज्ञ की संपन्नता से ही वर्तमान थे। ब्राह्मण ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि अगर पुरोहित यज्ञ न करता तो सूर्य उदय नहीं हो सकता था। यज्ञिक कार्य भिन्न होने के कारण तथा पुरोहित की रुचि न लेने के कारण रात्रि अत्यंत लंबी हो सकती थी, महीने नहीं व्यतीत हो सकते थे। केवल वेद के ज्ञान और यज्ञ के अनुसरण से ही समस्याओं और वस्तुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। ज्ञान के तीन तीन प्रधान तत्व थे, ऋक, यजु और सामवेद। ऋक पृथ्वी था, यजु वायु और साम आकाश। व्यक्ति इन तीनों वेदों के माध्यम से पृथ्वी, वायु और आकाश को विजित कर सकता था। ऋक और साम इंद्र और वाक थे तथा यजु विष्णु और प्रज्ञा। अतः प्रज्ञा और वाक शक्ति का जीवन में अत्यधिक प्रभाव था। इन शक्तियों के बिना मनुष्य निर्वाक और निरर्थक था। यज्ञ से ही शक्ति प्राप्त होती थी, जिसे देवता प्रदान करते थे। यह मनुष्य पर निर्भर था कि वह देवता को क्या अर्पित करता था तथा यह देवता पर आश्रित था कि वह मनुष्य को क्या प्रदान करे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो देवता भी यज्ञ करते थे। स्वर्ग उनका निवास स्थान नहीं था। यज्ञ संपन्न होने पर ही उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य और देवता दोनों प्रयत्नशील थे। इस युग का ब्राह्मण पुरोहित उद्दाम वाचा और उत्कृष्ट अभिलाषा रखने लगा था। वह यज्ञ करता था जिसका उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता था, किंतु यह यज्ञ के फल में भी अपना हिस्सा चाहने लगा था। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि इस पर याज्ञवल्क्य ने विरोध किया था और कहा था कि यज्ञ का फल यज्ञ करने वाले को मिलना चाहिए, न कि यज्ञ कराने वाले को। यज्ञ कराने वाला तो यज्ञकर्ता द्वारा परिश्रमी के बदले नियोजित किया जाता है। अतः यज्ञ कराने वाले द्वारा यज्ञ के फल में से हिस्सा मांगना अत्यंत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। फिर भी परवर्ती काल में जिस हिंदू धर्म का विभिन्न संप्रदायों और मतों के रूप में विकास हुआ, उसमें भी ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी और उन्हीं का वर्चस्व था। समस्त धार्मिक क्रियाओं की संपन्नता उन्हीं की कृपा के ऊपर थी। यही नहीं, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के कठोर नियमों से आबद्ध कर रखा था। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण धर्म के विरोधी धर्मों का विकास हुआ, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म प्रधान थे। इसमें पहली हेडलाइन है, महाकाव्यों के काल का धर्म। वैदिक युग के बाद जब तात्कालिक समाज का विस्तृत विकास हुआ, तब धार्मिक क्रियाकलापों में भी विकासशील परिवर्तन आया, फलतः उसका आयाम बढ़ा। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में हिंदू धर्म के विषय में विस्तृत चर्चा मिलती है, जिनमें जगन्नियंता, देवाधिदेव, विष्णु के अवतार और पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा की चर्चा की गई है। राम और कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। वाल्मीकि ने रामायण में राम से संबंधित प्राचीन कथा का वर्णन किया है। उसमें वर्णित घटनाएं महाभारत की घटनाओं से भी प्राचीन है। महाभारत का युद्ध 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच कभी हुआ था। अतः रामायण की घटनाएं संभवतः 3000 ईसा पूर्व की हैं। रामायण का मूल लेखन 600 ईसा पूर्व के पूर्व ही हुआ था तथा बाद में उसमें अनेक प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए गए। उसके प्रथम और सप्तम कांड प्रक्षिप्तांश है जिनमें ईश्वरा अवतार की चर्चा है। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन तो है ही, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन है जिसमें रामोपाख्यान भी मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि रामकथा महाभारत की घटनाओं के पहले से प्रचलित थी। महाभारत ग्रंथ का प्रणयन 600 ईसा पूर्व के बाद ही किसी समय हुआ। महाकाव्य काल में कुछ वैदिक देवताओं का प्रभाव कम हो गया और कुछ का अधिक। सोम चंद्रमा के रूप में अवश्य देवता बना रहा किंतु उसकी वैदिक युगीन प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी। सूर्य की महत्ता पहले से कम हो गई थी यद्यपि वह विश्व को यथावत प्रकाशित करता था। इसी प्रकार अग्नि का भी प्रभाव प्रवर्ती काल में आकर क्षीण हो गया। वैदिक युग की तरह वह अब युद्ध नहीं जीत सकता था। उसका कार्य मात्र वनों का को जलाना तथा और आग उत्पन्न करना ही रह गया था। ऋग वैदिक वरुण जैसा शक्तिशाली देवता इस युग में अपना स्थान खो चुका था। असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र का गौरव पहले की तरह नहीं रह गया था यद्यपि वह स्वर्ग में विराजता था। अर्जुन स्वर्ग में जाकर इंद्र के यहाँ 5 वर्ष तक रहा और उसने अपने शस्त्र ज्ञान प्राप्त किए। लौटने पर अर्जुन को संभवतः शैव प्रभाव के कारण शिव के यहाँ जाकर भी शस्त्र ज्ञान की कामना करनी पड़ी। इस युग में विष्णु का महत्व बढ़ गया था तथा उसके अवतार की कथा विकसित हो चुकी थी। वह परम आत्मा तथा अग्नि स्वरूप था। धन के देवता कुबेर और यक्षों का उल्लेख होने लगा था। यक्ष शिव के सेवक माने गए थे। शिव का निवास कैलाश पर्वत पर था। सूर्यपुत्र धर्म वैवस्वत का एक नए देवता के रूप में उदय हुआ था जो काम देवता का जनक था। इस युग में हिमालय मंदर विंध्य जैसे पर्वत तथा गंगा यमुना जैसी नदियां क्रमशः ही देवता और देवी के रूप में गृहित की गई। ब्रह्मा अथवा प्रजापति सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में अंगीकार किए जा चुके थे। ब्रह्मा के साथ शिव और विष्णु की संयोजना की गई थी तथा ब्रह्म विष्णु और महेश तीनों देवताओं की प्रतिष्ठा स्वीकार की गई थी। यम के यहाँ राजा और अपूर्णकर्ता एक साथ उपस्थित किए जाते थे और उनके कर्म का आकलन होता था। तत्कालिक युग की यह भी विचारधारा थी कि तारे मरे हुए लोगों के आत्म रूप थे। शक्तिशाली रूप में हनुमान का दोनों महाकाव्यों में उल्लेख हुआ है। वाल्मीकि ने रामायण में यह दर्शित किया है कि चरित्र इस तरह आदर्शात्मक होना चाहिए कि वह देवता तक पहुंच जाए। उसके अनुसार चरित्र ही धर्म है और इस प्रकार राम जिनका चरित्र उच्च है मूर्तिमान धर्म है। रामोह विग्रहवान धर्म। यह चरित्र संयम सत्य इंद्रिय नियंत्रण कर्तव्य पालन दायित्व निर्वाह लोक मर्यादा की रक्षा दीन दुखियों के प्रति दया और रक्षात्मक कार्य समाज की व्यवस्था में योगदान आदि पर अवलंबित था। इन्हीं गुणों और कर्मों से चरित्र का निर्माण संभव था तथा धर्म की संभावना बढ़ती थी। परमार्थ के प्रति व्यक्ति अग्रसर होता था। लोक मंगल और रंजन को उद्घाषित करता था। राम का चरित्र और आचरण उच्च कोटि का है जिसमें अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर और सत्कार की भावना है। जो कैकेयी के कहने पर राज्य त्याग देने के लिए तत्पर हो गए तथा भीरुता का आरोप किए जाने पर कहा कि मैं अपने बाणों के प्रहार से समस्त पृथ्वी को विनष्ट कर सकता हूँ तथा अपना राज्याभिषेक करा सकता हूँ, किंतु मैं अधर्म से भय खाता हूँ क्योंकि मैं धर्म के बंधन से आबद्ध हूँ। स्पष्ट है कि वह धर्म और सदाचार के अनुयायी थे तथा असत के विरोधी। सत्य सदाचार और धर्म को रामायण में व्यक्ति का भूषण माना गया है जिनसे देवत्व का निर्माण हुआ। महाभारत में विविध कथाओं के माध्यम से लोक धर्म की अभिव्यक्ति की गई है, जिसमें धार्मिक विधानों के माध्यम से सामाजिक अभ्युत्थान की बात भी सम्मिलित है। इसमें विविध पात्रों, चरित्रों और व्यक्तियों का विशद वर्णन है तथा उनके अनेकानेक पक्षों का विरूपता के साथ निरूपण भी। इस ग्रंथ में लोक धर्म के विविध रूपों का प्रवचन हुआ है। वैदिक यज्ञों, शिव, कृष्ण, दुर्गा, इंद्र आदि विभिन्न देवी देवताओं का पूजन और स्तुति की गई है। इनके अतिरिक्त आर्येतर धर्म से संबंधित पर्वत, नाग, राक्षस और यज्ञ की पूजा का भी उल्लेख है। इस काल में धार्मिक तीर्थ भी प्रतिष्ठापित हो गए थे, जो तप और मन साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त थे। तपस्वी, विद्वान और कीर्तिशाली को ही तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता था। तीर्थ स्थानों पर आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का परिचय सन्यासियों और तपस्वियों को प्राप्त होता था। अहंकार, क्रोध, असत्य और आदि से रहित व्यक्ति तीर्थ स्थान के पूरे से लाभान्वित होता था। सभी धर्मों और संप्रदायों का निचोड़ इस ग्रंथ में है। नियतिवाद, प्राज्ञावाद और अध्यात्मवाद का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। प्रमाद, मोह और क्रोध ही मृत्यु के कारण माने गए हैं, जो मनुष्य से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मृत्यु को रोकना मनुष्य के हाथ में है। सत्य को ही एकमात्र वेद माना गया है, जो पाप से मुक्ति प्रदान करता है। कामों का हनन करना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना था। 12 महाव्रतों की चर्चा की गई है, जो व्यक्ति को ज्ञानी अथवा ब्राह्मण के पद प्रदान करते थे। धर्म, सत्य, दम, तप, यज्ञ, दान, श्रुत, धैर्य, ह्री, प्रसाद, तितिक्षा और अनुसूया नामक 12 महाव्रतों से मनुष्य का व्यक्तित्व तो प्रखर हो उठता था। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, शोक, मान, असूया, स्पृहा, घृणा, दैन्य और संग्रह वृत्ति मनुष्य के 12 शत्रु थे, जो उसके आध्यात्मिक और लौकिक विकास को अवरुद्ध करते थे। शील और सदाचार से संबंधित तत्व मनुष्य के अध्यात्म और प्रज्ञा का उत्कर्ष करते थे। वैदिक युगीन यज्ञों का इस युग में नए संदर्भों के साथ अनुपालन किया जाता था। साधारणतः गृहस्थ 5 महायज्ञ करता था, जिसमें पितरों, देवों, ब्राह्मणों, अतिथियों और भूतों को संतुष्ट किया जाता था। तत्कालिक युग में अश्वमेध और राजसूय यज्ञ भी प्रचलित है। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ। पृथ्वी विजय करने में जो भी पाप राजा से होता था, वह उसके यज्ञ करने से समाप्त हो जाता था, जिसमें गाय और गांव पुरोहित को दान में मिलते थे। इस युग में नाग यज्ञ भी हुआ था, जिसे महाराजा जनमेजय ने संपन्न किया था। ये यज्ञ मन, वाणी और कर्म द्वारा संपन्न किए जाते थे तथा स्वर्ग की प्राप्ति की कामना की जाती थी। वस्तुतः सिद्धियों की प्राप्ति यज्ञों की संपन्नता से ही संभव थी। देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण दिया जाता था, जिसमें उनसे प्रीति, कृतज्ञता की भावना निहित रहती थी। तात्कालिक धार्मिक भावना का यह भी एक प्रधान तत्व था। रामायण से विदित होता है कि राम और सीता नित्य तर्पण देते थे। पांडव भी तर्पण देकर मंगल कामना किया करते थे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संध्या पूजन और अग्निहोत्र भी समाज में प्रचलित थे। प्राचीन ऋषियों को दीर्घायु, यश, बुद्धि और आध्यात्मिक बल इसी के माध्यम से प्राप्त हुए थे। रामायण से विदित होता है कि राम और लक्ष्मण संध्या और अग्निहोत्र दोनों करते थे। अग्निहोत्र के संदर्भ से महाभारत में विवृत है कि अग्नि में हविष से डालने से वह सूर्य को प्राप्त होता है, जिससे वह प्रसन्न होकर जलवृष्टि करता है और फलतः संसार में अनुत्पादन होता है। युधिष्ठिर संध्या और अग्निहोत्र दोनों किया करते थे। समाज में सत्य की प्रतिष्ठा थी, उसकी तुलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से की गई थी। सत्य ही ब्रह्म का रूप था। दोनों महाकाव्यों में सत्य की उत्कृष्ट मीमांसा की गई है तथा उसे मनुष्य को उच्चस्थ पद प्रदान करने वाला माना गया है। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, जिन्होंने जानबूझकर कभी असत्य नहीं बोला। सत्य का सत्य से अन्योन्याश्रित संबंध था, अतः महाकाव्य में सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष विवृत हुआ। सत्य की महिमा अपार थी, जो व्यक्ति को परम तत्व की प्राप्ति कराता था। दूसरी हेडलाइन है गीता का चिंतन पक्ष और दर्शन तत्व। गीता ने एकांतिक धर्म का प्रवर्तन किया था जिसका दर्शन तत्व जन्म और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा तथा कर्म और योग था। गीता हिंदू धर्म का प्रधान स्तंभ है जो महाभारत रूपी समुद्र का मथा हुआ अमृत है। उसमें सभी मतों, दृष्टियों, सिद्धांतों और विचारों का समन्वय है। इसका दर्शन तत्व उपनिषदों से प्रभावित है। ब्रह्म और आत्मा का निरूपण उसमें समान आधार पर हुआ है। जीवन और मृत्यु की चर्चा करते हुए कहा गया है कि मृत्यु कोई अद्वितीय वस्तु नहीं है, कोई मरता नहीं है। आत्मा अव्यक्त, अचल, अमर, सत्य, निष्ठ, नित्य, अनचित्य, व्यापक, अजर और अमर है। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण वस्त्र को उतारकर मनुष्य एक नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा जर्जर और अकर्मण्य शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है और उससे पुनः तत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, उससे डरना अज्ञानता है। ज्ञान से भेद समाप्त हो जाता है तथा मनुष्य जीवन और मरण के अंतर को अनुभूत कर लेता है। फलतः सम्यक स्थिति की विद्यमानता होती है जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों को मनुष्य संभाव से देखता है और उसके अंतस में किसी प्रकार का अभिप्स नहीं रह जाता। कर्म की महत्ता। अनासक्त और निष्काम कर्म का प्रतिपादन भी गीता का प्रधान विषय है। इसे कर्म की प्रतीति ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान की प्राप्ति से ही परम पद की प्राप्ति होती है, किंतु कर्म और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। निरक्षर विवेकी होकर कर्म करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा की भी अपेक्षा होती है। इससे निष्काम कर्म प्रस्तुत होता है। पराभक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता तथा निष्काम कर्म के बिना भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतः ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का अविनाभाव संबंध है। अहंकार और अभिलाषा का त्याग करके बुद्धि और विवेक को अपनाकर जो कर्म किया जाता है उसी से शांति मिलती है। इसका अनुसरण करने वाले को परमानंद मिलता है। ऐसे ही व्यक्ति यथार्थतः पंडित है, वास्तव में वह सन्यासी है तथा कर्मजन्य बंधन और समस्त पापों से मुक्त हैं। इस प्रकार के कर्म करने से अंतः शुद्धि होती है तथा इस मार्ग का अनुसरण करता सात्विक कर्म करने वाला होकर योग की सिद्धि प्राप्त करता है। अतः कर्म के फल की कामना नहीं करनी चाहिए, कर्म केवल कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। इससे योग की सिद्धि प्राप्त होती है तथा ऐसा व्यक्ति सात्विक कर्म करने वाला कहा जाता है। मनुष्य का शरीर सत्व रज तम से बना हुआ है। शरीर में तक तक रजोगुण शरीर में जब तक रजोगुण रहता है तब तक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। अतः अपने कल्याण तथा लौकिक और परलौकिक आनंद के निमित्त मनुष्य को सर्वदा निष्काम भाव और कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए। मनुष्य का लक्षण ही कर्म है। यह संसार कर्म भूमि है। कर्म का त्याग मृत्यु है। मन के उत्साह से व्यक्ति महान बनता है तथा कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। समस्त भौतिक और अभौतिक संपदाओं की प्राप्ति कर्म से ही संभव है। अतः सदाचार, बुद्धि और सत्य के मार्गों को अपनाकर कर्म करना चाहिए। ख, भक्ति की प्रधानता। भक्त को भगवान की प्राप्ति अनुपम भक्ति के माध्यम से ही संभव है। इस संबंध में स्वयं भगवान का कथन है कि वह परम पुरुष जिसके अंदर सभी भूत हैं और जिसने समस्त विश्व का विस्तार किया है केवल अन्यन्य भक्ति से मिलता है। उनका आगे कहना है, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ और वे मेरे हृदय में रहते हैं। भगवान के प्रति अनुपम भक्ति होने के कारण ही अर्जुन को विश्व रूप अथवा विराट रूप का दर्शन प्राप्त हुआ था। भक्त का समस्त भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त तथा साधक काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से दूर रहकर साधना में लगा रहता है। वह सुख दुख में समान भाव से रहता है। उसमें यह भावना बुद्धि और विवेक से उत्पन्न होती है। अपनी इंद्रियों और मन को वह बस में रखता है तथा भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए आत्मसमर्पण करता है। स्वल्प भोजन का कायिक वाचिक और मानसिक संयम के साथ भगवान को छोड़कर कहीं और आसक्त नहीं होता। वह अपने मन को नियंत्रित करते हुए भगवान को स्मरण करने में लगाता है। भगवान की अनुकंपा के लिए वह जीवन भर प्रयत्न करता है तथा जीवन के अंतिम क्षण में जो भाव उसमें आते हैं उसका आगामी जीवन वैसा ही बनता है। मोह के कारण ही भक्त को सच्चे कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो पाता। गीता में इस मोह पास से मुक्त होने का मत प्रतिपादित किया गया है। प्राण और अंतसह दोनों से मिलकर ही की गई एकनिष्ठ भक्ति साधना उन्नत मानी गई है। यौगिक साधना के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा और अष्टांग योग प्रक्रिया अनिवार्य है। इसे जान लेने से और कोई जानने योग्य विषय नहीं रह जाता। ग मुक्ति की व्याख्या। मुक्ति पाना जीव का परम लक्ष्य होता है, जो सत्कर्म से ही संभव है। कर्म का भोग अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है तथा बुरे कर्म का फल बुरा। मनुष्य इसी उचित अनुचित को समझकर और बुद्धि के आधार पर निर्णय करके कार्य करता है तथा परम लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होता है। अच्छा कर्म ही धर्म के अंतर्गत आता है। जो पवित्र कार्य करते हैं तथा जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाता है और उन्हें संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, वह परागति कही जाती है। अपरागति वह होती है जिसमें मनुष्य के कर्म कुछ पुण्य और कुछ पाप से युक्त होते हैं। इसे मनुष्य को कर्म के भोग के लिए इस संसार में पुनः आना पड़ता है। परागति में जीव मुक्त होकर कभी सीधे परम धाम की ओर जाता है और कभी अन्य लोकों से होते हुए। इन्हें क्रमशः सधोमुक्ति और कर्म मुक्ति कहते हैं। जीव सीधे ऊपर की ओर जाता है जिसे उत्क्रमण कहते हैं। घ जगत से संबंधित तत्व। जगत के पदार्थों पर विचार करते हुए गीता में तीन तत्वों का निरूपण किया गया है। पहला क्षर, दूसरा अक्षर और तीसरा पुरुषोत्तम। जगत का समस्त जड़ पदार्थ क्षर कहा गया है, जिसे अपरा प्रकृति, अधिभूत क्षेत्र और अस्वस्थ भी कहा जाता है। यह विकारों, कारणों और भूतों का मूल कारण कहा गया है। विकार के अंतर्गत आकाश यदि 5 भौतिक परमाणु और 5 तन्मात्राएं विकार हैं। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया किरण है। राग, द्वेष, सुख, दुख, परमाणुओं का संघात, चेतना और धृति भी क्षर के अंतर्गत है। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मानस, बुद्धि और अहंकार ईश्वर की अपरा प्रकृति के रूप माने गए। अपरा प्रकृति का ईश्वर से अनादिकाल से संबंध है, जिससे बंधन प्राप्त होता है। प्रलय काल में समस्त भूत इसी में समा जाते हैं तथा सृष्टि के समय उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकृति को अधिष्ठान मानकर परमात्मा जगत का निर्माण करता है। अतः जगनीयता भगवान ने प्रकृति को मम योनिर्मह ब्रह्मा कहा और अपने को अहम बीज प्रद पिता। अक्षर तत्व को परा प्रकृति, अध्यात्म, पुरुष और क्षेत्र कहा गया है। इसका स्थान अपरा तत्व से शीर्षस्थ है तथा विश्व को धारण करता है। यह अक्षर अथवा परा प्रकृति भूतों का कारण, भगवान का अंश और मरणोपरांत एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाली तथा इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करने वाली ईश्वर की दूसरी प्रकृति मानी गई। मात्र अविद्या के कारण यह तत्व ईश्वर से अलग लगता है। यह उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। भगवान और जीव में मूल भेद रही, दोनों में गुण समान है। केवल अविद्या के कारण जीवित स्थिति में जीव को इसका मान नहीं हो पाता। अंग पुरुषोत्तम अथवा परमात्मा। पुरुषोत्तम प्रधान तत्व और आधार है, जो ईश्वर, परमात्मा, वासुदेव, कृष्ण, प्रभु, महायोगेश्वर, ब्रह्म, अधियज्ञ, विष्णु, परम पुरुष आदि के नाम से ख्यात है। वह विश्व का आदिम बीज और अंतिम तत्व है। उसी से सभी भूत उत्पन्न और नष्ट होते हैं। वह सचेत और गतिशील माना गया है। गति की प्रक्रिया में उसके दो रूप दर्शित होते हैं, एक पराप्रकृति और दूसरा अपराप्रकृति। पराप्रकृति मनुष्य अथवा जीव है तथा अपराप्रकृति के भौतिक जगत का मूल रूप। इसमें संतुलन, गति तथा स्थिति निहित है। इन तीनों गुणों से वह क्षुब्ध रहता है जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार नामक आठ हिस्से बन गए। मन, प्राण और भूत इसके तीन रूप हो गए जिनसे उद्भव और विनाश होता है। माया उसकी दैवी शक्ति है जो त्रिगुण युक्त उसके साथ रहती है। माया अचिंत्य है इसलिए वह सत और असत भी नहीं कही जा सकती। पुरुषोत्तम सर्वव्यापक होते हुए अपनी प्रभा से समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उसमें पुरुष प्रकृति के द्वित्व की परिकल्पना की गई है। एक ही समय में अखंड और पूर्व ब्रह्मा होने के कारण वह निर्गुण, सगुण तथा साकार, निराकार दोनों रूपों में व्याप्त है। सारा संसार उसी में है, वह सबके निकट है, वह दिव्य रूप है, इसलिए उसे देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। अर्जुन को दिव्य रूप दिखाने के लिए भगवान ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। च अवतारवाद की अवधारणा। अवतार की भी व्याख्या गीता में की गई है। जब जब पृथ्वी पर धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होने लगता है तब तब भगवान को धर्म के संरक्षण के लिए अवतार लेना पड़ता है। अवतार में इन्हें इस संसार में रहने की उपयुक्त एक शरीर ग्रहण करना पड़ता है तथा साधु और संत व्यक्तियों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश एवं धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। एक स्थान पर भगवान ने स्वयं कहा है, अपनी प्रकृति का अधिष्ठान कर अपनी माया की सहायता से मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ। अतः माया और जगत स्रष्टा भगवान का अन्योन्याश्रित संबंध है। गीता में वर्णाश्रम धर्म के पालन की बात कही गई है जो गुण और कर्म और स्वभाव पर आधारित था। अपने अपने धर्म का अनुपालन करना श्रेयस्कर है। सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम और अहिंसा सभी के लिए अनिवार्य मानी गई है। भगवान के अनुसार दूसरे के धर्म का अनुसरण करना अनर्थकारी और भयंकर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का ही अनुपालन करना चाहिए। अपने धर्म के लिए मर जाना श्रेयस्कर है किंतु उसका त्याग नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार मनुष्य से अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं था। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक थे जिससे लोक का समन्वय था। इस प्रकार मानवतावाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि गीता में परिलक्षित होती है। जगत और जीवन, आत्मा और परमात्मा, मोह और माया, राग और त्याग आदि का अद्भुत समन्वय गीता में दर्शित होता है। पराप्रकृति और अपराप्रकृति तथा दैत और अद्वैत जैसे दर्शन और ज्ञान का सम्मिलन एक स्थल पर हुआ है जो गीता की अपनी एकमात्र विशेषता है। तीसरी हेडलाइन है पौराणिक धर्म। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में महाकाव्यकालीन धर्म के पश्चात पौराणिक धर्म की गणना की जाती है। पौराणिक धर्म में पुराणों का अद्वितीय योगदान है। वस्तुतः हिंदू धर्म का व्यापक विकास, देश के विभिन्न भागों में उसका विस्तृत प्रसार तथा जनजीवन में उसके प्रति अनुपम आस्था पुराणों के ही युग से संभव हो सकी है। सरल और सुंदर शैली में हिंदू धर्म का जितना सर्वांगीण विवेचन और आलेखन पुराणों में हुआ है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। पुराण साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। उसका उत्स वेदों से माना गया है। वेदकालीन अश्वमेध यज्ञ के समय सुनाए जाने वाले परिप्लव आख्यान से पुराण का उद्भव हुआ, इसलिए पुराण का उद्गम स्थान यज्ञ है। आर्य और आर्येतर धार्मिक मान्यताएं महाकाव्यकालीन धर्म में अभिव्यंजित होती हैं, जो पौराणिक धर्म में आकर और अधिक समन्वित हुई। विषयानुसार पुराणों के पांच लक्षण हैं। पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर और पांचवा वंशानुचरित। क्रमशः इनका सभी का अर्थ हुआ जगत की सृष्टि, सृष्टि का विस्तार, विनाश और पुनः सृष्टि, राजाओं की वंशावली, चौथे का पृथक पृथक मनुष्य के समय में घटित प्रसिद्ध घटनाएं और पांचवे का अत्यंत प्रसिद्ध राजवंशों का सविस्तार वर्णन। इस तरह पुराण धर्म आख्यान और दर्शन वर्णन के अतिरिक्त विविध ज्ञान विचार और इतिहास के ज्ञान कोश भी हैं। पुराणों में विवृत इतिहास की भारतीय कल्पना पश्चिमी जगत के राजनीतिक और घटना वर्णन परक इतिवृत्ति से पूर्णतः अलग और स्वच्छंद है। उनमें पुरुषार्थ चतुष्टय से सम्मिलित पूर्ववर्ती आख्यानों का रूपांकन ही नहीं है, बल्कि राजाओं के चरित्र चित्रण के साथ महान विद्वान ऋषियों के चरित्र आख्यान और भविष्य में घटने वाली अद्भुत बातों का भी सन्निवेश है। इन विषयों के साथ साथ धर्म का भी अभिरामतापूर्वक वर्णन किया गया है। सृष्टि से लेकर प्रलय तक की घटनाओं, कथाओं और विवरणों को पुराण लेखकों ने लिपिबद्ध किया है, जिसमें धार्मिक पृष्ठभूमि पर राजवंशों के उत्थान, प्रसार और पतन का मार्मिक चित्रण है। किंतु पुराणों की वर्णन शैली अतिशयोक्ति और अतिरंजनापूर्ण होने के कारण उनके ऐतिहासिक महत्व को कम करती है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार वस्तु कथन के तीन प्रकार हैं। पहला स्वभाव कथन, दूसरा रूप कथन, तीसरा अतिशयोक्ति कथन। स्वभाव कथन का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक ही वर्णन करता है। रूप कथन में वैदिक उक्तियां आती हैं जो रूपक के रूप में व्यक्त की जाती है, जैसे सूर्य की सप्तरंगी किरणों को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। अतिशयोक्ति कथन पुराणों का प्रधान आधार है, जिसमें वस्तुओं को पढ़ा चढ़ाकर अतिरंजनापूर्ण भाषा में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में इंद्र और वृत्त के युद्ध, मेघ और अवर्षण के परस्पर संघर्ष की रूपक शैली में प्रतीक आधार पर अनेक बार वर्णित हुए हैं, जो पुराणों में एक विशाल भूमिपाल के निजी शत्रु के विकट युद्ध के रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण आधार पर चित्रित है। निश्चय ही घटना और तात्पर्य में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उक्ति कथन और आख्यान में है।